السلام علیکم خواتین حضرات، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سبھی کو عشق ہے، تو اپنے اس عشق میں ظاہر ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو ہم اس خواہش کے تحت بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ زیارت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، خواب میں اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار ہے، اسے بے شمار نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار کر سکے۔ وہ لوگ اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، باطن سے صاف ہیں، لیکن مجھ جیسا گناہگار آدمی جب کوئی یہ خواہش کرتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہا انسان۔ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، احمد بن مبارک، انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے یہ سوال کیا کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا، تو یہ کس طرح سے پتہ چلے؟ تو خود ہی اپنے سوال کے جواب میں جناب احمد بن مبارک صاحب نے فرمایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر نہیں سکتا جب تک کہ روحانیت کے 2999 مقامات کی سیر نہ کر لے۔ تو پھر یا تو یہ پوچھا جائے ایسے آدمی کے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان 2999 مقامات کی سیر کی ہے یا نہیں کی ہے، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ دیانتداری سے کر رہا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا دیکھا۔ تو ان کے مرشد نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا تھا، بہت خوبصورت جواب تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم انسان، ہمارے جسم میں 366 رگیں ہیں، 366 رگیں ہیں، اور ہمارے اندر جو خصائص پائے جاتے ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹو، वो सबके सब रगें इन खसाइस के साथ मुताल्लिक हैं कहीं ना कहीं। जब कोई साहिब शक कश्फ इंसान दूसरे इंसान को देखता है, ये कश्फ शख्सी कहलाता है, ये जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। कश्फ में मुख्तलिफ किस्में हैं, तो ये कश्फ शख्सी में आता है। ये तो साहिब कश्फ ने अगर किसी इंसान पर नजर डाली तो उसके अंदर उसे ये रगें बड़ी नुमाया दिखाई दे रही होती है। अब इनमें एक रग वो है जो झूठ की है, झूठ से मुताल्लिक है, झूठ कई किस्म का है। एक झूठ वो है जो मैं बोलता हूं, एक झूठ वो है जो बदगुमानी है, एक झूठ वो है जो मैं किसी को झूठा समझ रहा हूं, दर हकीकत झूठ झूठा नहीं है। एक झूठ की किस्म यह है। तो वो रगें रोशन दिखाई देती हैं उसको, साहिब कश्फ को। तो यूं आपने देखा होगा कि जब आप औलिया इकराम के पास जाते हैं तो उनमें से कोई कोई वली अल्लाह आपको कह देता है कि मैं रात शलजम गोश्त इतना नहीं खाना था। तो आदमी हैरान होता है कि इसको किस तरह पता कि रात मैंने क्या खाया था। वो उसकी रग देख रहा है आपकी, और उसको देख के उसने उसके अंदर वो सहार और बर्दाश्त नहीं है, बोल पड़ा है। ये और बात है कि बहुत ऊपर के दर्जे का अगर वली अल्लाह है तो कश्फ में सब कुछ देखता है, लेकिन वो कभी कहता नहीं किसी से कि तुमने ये किया। लोग गाना सुनकर आते हैं रात आधी रात के बाद, और गुजरते गुजरते उस किसी वली अल्लाह के पास गए तो उसको कहते हैं कि साहब मैं असल में तहज्जुद पढ़ने आया था, यहां तहज्जुद पढ़ के अब घर जा रहा था, सोचा आपको सलाम कर लूं। वो देख रहा है कि आप गाना सुन के आए हैं, वो कभी नहीं कहेगा। तो ये भी नहीं कहेगा कि हाँ तुम नमाज पढ़ के आए, इसलिए कि वो झूठी गवाही नहीं दे सकता। वो बड़ी खूबसूरती से कहेगा मियां बड़ी अच्छी बात है तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद पढ़ा करो। अब आप मेरे जैसा इंसान ये समझा कि मैंने चक्कर दे दिया उन वली अल्लाह को, तो उन्होंने मेरी बात को यकीन कर लिया है, इसलिए कह रहे हैं कि हाँ तहज्जुद पढ़ना अच्छी बात है, तहज्जुद पढ़ा करो। दर हकीकत वो नसीहत मुझे कर रहे हैं कि तहज्जुद पढ़ा करो जाके। तो जो बड़े मकाम पर चले जाते हैं औलिया कराम, उनमें सहार और बर्दाश्त बहुत होती है। वो किसी के झूठ को ना पकड़ते हैं न जतलाते हैं कि हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो इंसान के क्योंकि जब उसे कश्फ हासिल होगा, कश्फ के इस मकाम पर जाएगा कि उसे कश्फ शख्सी हासिल हो जाए, तो जानना शुरू कर देगा। क्योंकि ये कश्फ का मामला है, बतदरीज शुरू होता है, बात आहिस्ता आहिस्ता आदमी आगे बढ़ता है। तो रब ताला जब किसी वली अल्लाह पर रहमत फरमाता है, उसको इल्म अता करता है, तो कश्फ की उसकी इब्तदा आलम नासूत की सैर से होती है, और वो आलम नासूत की सैर भी यकलक नहीं शुरू होती बल्कि बहुत ग्रेजुअल होती है। तो सबसे पहले वो अपने इर्द गिर्द की चीजों का मुशाहिदा करने लगता है, उसके बाद वो समुन्दर की गहराई में जो चीजें रहती हैं उनका मुताला करता है, मुशाहिदा करता है, उसके बाद वो रूह जमीन पर जो चीजें हैं उनका मुशाहिदा करता है। तो आलम नासूत से निकलकर फिर वो आलम जबरूत की सैर करता है। तो जब वो आलम जबरूत की इसी तरह ग्रेजुअली सैर कर चुकता है तो वो आलम मलकूत की सैर करता है। फिर तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे गुजरता है। मैं मौजू से हट गया। होता ये है कि इंसान जब ये ख्वाहिश पालता है और कुदरती तौर पर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, तो फिर जरूरी ये हो जाता है कि खुली आंखों से अगर दीदार करना है तो इंसान अपने अंदर की सफाई कर ले, फिर आलाइशों को एक एक करके दूर करता चला जाए। क्योंकि जब बिल्कुल अंदर से पाक साफ हो जाएगा तो फिर जब वो दीदार करेगा तो उस दीदार का मजा कुछ और है। हर इंसान के अंदर अंधेरा है, उस अंधेरे में अगर ये आलाइश रह जाए तो फिर वहां नूर दाखिल नहीं होता। अगर ये आलाइशें खत्म हैं और इंसान के अंदर बदस्तूर अंधेरा है तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुली आंखों से दीदार करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फिर उस अंधेरे को दूर कर देता है, वहां अंदर रोशनी फैल जाती है। तो इसलिए दीदार की ख्वाहिश करना बड़ी अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अंदर की आलाइशें निकाल लें हम कि अगर मेरी आलाइशें निकल सकें कभी तो फिर उस अंधेरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का नूर उन अंधेरों से मुझे निजात दिला देगा। भी किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि जब इंसान शिद्दत से कोई दुआ बार बार मांगे तो कैसे पता चले कि उसकी दुआ कबूल हुई या नहीं। हजूर, मैंने अर्ज किया था कि जो चीजें पहले कई बार बयान हो गई, अगर उन चीजों को मैं दोहराता हूं, जब मुझे तो एतराज नहीं, मैं दोहरा दूंगा, मुझे तो मैंने तो आपकी समा खराशी करनी है एक घंटा, तो मैं किसी तरह भी आपकी समा खराशी करता चला जाऊंगा। लेकिन लोग एहतजाज बड़ी शिद्दत का करते हैं, तो ये तो शुक्र कीजिए कि किसी सामने एहतजाज करते करते मेरा घेराव जलाव नहीं शुरू किया अभी। तो ये जब दुआ के बारे में यहां गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने बड़ी तफसील से अर्ज किया था कि दुआ जब हम करते हैं तो उसके कबूलियत का मैकेनिज्म क्या है, और मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं कि इंसानी जहन के तीन हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। जब हम दुआ मांगते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से हम मांगते हैं दुआ। इसलिए आपने नोट किया होगा कि इंसान जब किसी चीज के बारे में उसकी तलब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो दुआ मांगना जब शुरू करता है तो उसकी दुआ में खुशू व खजू बहुत होता है, वो पूरी तरह डूब के दुआ मांगता है। लेकिन वही दुआ और वही ख्वाहिश जो इतनी शिद्दत इख्तियार किए हुए है, जब दुआ मांगते उसे चार पांच दिन हो जाते हैं तो फिर उसकी दुआ में वो खुशू खजू रहता नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैकेनिकल एक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जुबान दुआ मांगती है बस, जहन कहीं और होता है, दिल कहीं और। फिर एक वक्त आता है कि ख्वाहिश तो अपनी जगह होती है लेकिन दुआ उस चीज की मांगना बंद कर देता है इंसान। वो दुआ इंसान भूलता नहीं क्योंकि ख्वाहिश जिंदा है। वो दर हकीकत वो दुआ कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी दुआ करता रहता है। तो एक आदमी दुआ मांगते हुए छोड़ चुका उस दुआ को कि मेरा तो काम ही नहीं होता। सडनली महीने डेढ़ महीने के बाद उसके अंदर एक अजीब इत्मीनान खुद ब खुद पैदा होता है कि मेरा ये काम हो जाएगा। ये उस सबकॉन्शियस माइंड की दुआ मांगने के नतीजे में जब दुआ कबूल हुई तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इत्मीनान उतरता है और हम कहते हैं कि दिल को इत्मीनान हो गया। या इसी तरह जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो पहली मर्तबा में जब दुआ मांगकर हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून होता है, एक यकीन होता है कि मेरी दुआ पूरी हो गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि दुआ पूरी हो गई, क्योंकि दुआ के भी तो तीन लेवल हैं। रब ताला दुआ सुनने वाला है। कुरान ने कहा कि रब ताला दुआएं सुनने वाला है। कुरान ही में रब ने फरमाया कि तुम्हारा रब दुआएं कबूल करने वाला है। और तीसरी चीज है दुआओं का पूरा होना। तो दुआ रब ताला फौरन सुन लेता है, रब ताला दुआएं फौरन कबूल कर लेता है, लेकिन रब ताला इस पूरी कायनात को रन करता है, उसका हुक्म इस कायनात को रन कर रहा है, वो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस पर कायम है। होता यह है कि हमारी कोई दुआ फिलफौर पूरी नहीं होती, सुन ली जाती है, कबूल कर ली जाती है, पूरी होने में वक्त लगता है कि वो जो पूरे कायनात का निजाम कायम कर रहा है उसकी सही स्लॉट में उस दुआ को पूरा होना है जाके, तो वो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ज्यादा वक्त लग जाता है। एक साहब को मेरे बारे में बहुत ही खुशफहमी पैदा हो गई, बहुत बड़े पाकिस्तान में ऊपर के जो दो चार छह ओहदे हैं उन पर थे। तो मैं टूर से वापस आया तो पता चला कि वो बार बार घर गाड़ी भेज रहे हैं कि शासक रखें कि ये डिनर है इस पर आ जाएं। तो मैं सीधा उनके घर चला गया जुआर में। तो खाने के दौरान शदीद खुशफहमी का शिकार थे, गलतफहमी भी थी, खुशफहमी भी थी, उनको नादानी थी उनकी। तो मुझे कहने लगे कि सर मुझे पोते की बड़ी ख्वाहिश है, आप दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे पोता अता करे। तो मुझे अल्लाह ऐसा मौका दे कि चलिए कोई एक तो बंदा ऐसा है जो अपनी सादगी में ये समझ रहा है कि मैं कोई नेक इंसान हूं, मेरी दुआ से कोई काम हो जाएगा। तो मैंने भी गर्दन नकड़ाई, मूछों को तौ दिया और बड़ा अकड़ कर कहा कि आपके दो बेटे हैं, उनमें जो छोटा बेटा है उसके यहाँ अल्लाह एक ही बेटा अता करेगा। तो उन्होंने कहा बड़े को, तो मैंने कहा बड़े को अल्लाह पोता बेटा नहीं देगा। उन्होंने कहा चलिए एक ही सही, खुश हो गए चले गए। तो मैंने बढ़िया बड़े फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ा के इधर उधर लोगों को देखा कि लोगों ने सुना या नहीं सुना कि मुझसे दुआ कराई इन्होंने। ये 1990 की बात है। वो साहब रिटायर हो गए, बात आई गई हो गई। 2009 में यहां दुआ का सिलसिला चल रहा था तो वो साहब मिठाई लेके बजाते खुद चले आ रहे हैं, बहुत मोहमर हो गए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये किस चीज की मिठाई है? तो कहने लगे कि आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मेरे छोटे बेटे को आज बेटा अता कर दिया। तो मैंने सोचा कि आपने दुआ की थी मैं आपको मिठाई दे आऊं। तो मेरी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मिठाई दी, ये बाहर दे दें, लोग खा लेंगे, आपको और सवाब पहुंचेगा। लेकिन जरा ये तो बताइए कि इन 19 सालों में मुझे गालियां कितनी दी कि बेटा नहीं हो रहा। तो ये मजाक से मैंने कह दिया। बात यह है कि दुआ पूरी बाज का तो अब 19 साल के बाद दुआ रब ताला ने पूरी कर दी। अब ये और बात है कि 19 सालों में उन्होंने मुझे न जाने क्या क्या कहां कहां क्या क्या कहा होगा। तो दुआएं पूरी होने में वक्त लग जाता है, एक लंबा वक्त लगता है। अब एक और दुआ मैंने कोई 4 हफ्ते पहले किसी के लिए कर दी। वह सादा लोग हैं जो धोखा खा जाते हैं मेरी मुझसे कि कोई नेक इंसान है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत दुआ कराई जिसके मुझे खुशी भी हुई। मैंने कहा कि हजूर जहां मैं रहता हूं वहां जिस चारपाई पे मैं सोता हूं उसमें खटमल बहुत हैं, दुआ कर दीजिए खटमल भाग जाएं। अब देखिए खटमल कब वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं। तो वो दुआ की बात हो रही थी कि दुआ के पूरे होने में वक्त लगता है। तो जब ये इत्मीनान दिल में आ जाए कि मेरी दुआ सुन ली गई तो फिर इंसान को आराम से बैठ जाना चाहिए कि वक्त आने पर रब ताला मेरा काम कर देगा। ये वो जो सुकून दिल में पैदा होता है वो निशानी है कि दुआ कबूल हो गई। इन्हीं साहब के एक सवाल है कि आपने कहा था कि जब मुरीद की ट्रेनिंग हो जाती है और उसे इल्म अता कर दिया जाता है तो मुर्शिद उसे नहीं मिलता, अगर किसी महफिल में मिले तो बाज़कात मिलेगा भी या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा क्यों है। मुरीद अपने मुर्शिद से दूर कैसे रह सकता है, ये तो बहुत तकलीफ दे है, और ये सजा क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आप ऐसी बात कही, बड़ी अजीब बात है कि मुर्शिद अपने मुरीद की ट्रेनिंग कर रहा है और वो ट्रेनिंग सालों पर मोहित है। 2-4 साल में तो होती नहीं, वो तो एक लंबा टाइम है, नॉर्मली 30-35 ईयर्स वो लग जाते हैं उसमें। तो मुरीद तो उसके करीब होगा तो उसकी ट्रेनिंग होगी, तो ये कैसे नहीं मिलेगा मुर्शिद अपने मुरीद को? अगर मिलेगा नहीं तो ट्रेनिंग नहीं होगी। शायद बात को समझ नहीं पाए, मालूम नहीं मैंने क्या कहा होगा जिससे उनको ये गलतफहमी हो गई। अच्छा नहीं, मैं मुझे ख्याल आ गया कि गलतफहमी कहाँ से हुई। जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था तो मैंने चिश्तिया साबरिया की का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ सिलसिले में ये दस्तूर चला आ रहा है कि जिसको खिलाफत अता होती है मुर्शिद के इंतकाल के वक्त वो वहां मौजूद नहीं होता, मुर्शिद के इंतकाल के फौरन बाद वो वहां पहुंच जाता है और कफन दफन हमेशा खलीफा ही के हाथों होता है। ये मैंने कहा था, उससे शायद समझने में कुछ गलती हो गई। ये अगला इनका सवाल है कि मुरीद हमेशा मुर्शिद की नजर में रहता है, मुरीद अगर कभी कुछ ऐसा करे जिसको चाहे कि मुर्शिद को इसका इल्म न हो तब भी मुर्शिद को पता चल जाता है क्या, ये सब बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रब है जिसको हर चीज का हर वक्त इल्म रहता है। इंसान का किसी मकाम पर जा पहुंचा हो उसको ये मर्तबा हासिल नहीं हो सकता कि वो हर वक्त किसी के अहवाल से खबरदार रहे। हाँ, उसको इत्तला अल्लाह दे देता है बशर्ते कि मुर्शद अपने उस मुरीद की तरफ तवज्जो करे। तो जब वो तवज्जो करेंगे उधर को तो उनको अपने इल्म के जरिए से ये पता चल जाएगा, और बाज़ुकात पिछली गुजरी हुई बातें भी उनके सामने कश्फ के जरिए आ जाती हैं। या आमतौर पर होता क्या है कि मुझसे अगर एक गलती हो गई और मुर्शद साहब ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई कि ये बहुत दिन से आया नहीं, किधर गायब है, तो कश्फ में उनको पता ये चला कि जनाब शाह साहब जो हैं वो फलां हलवाई की दुकान से बर्फी की एक डली उठा के बगैर इजाजत के खा गए, तो ये उनके इल्म में आ गई बात। तो चूंकि ये मेरे मुर्शिद की ट्रेनिंग की तालीम और उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ है बात, तो जब मैं मिलूंगा तो मेरी सरजनिश हो जाएगी फौरन। हो सकता है इससे बड़ा जुर्म मैंने किया हो, उधर तो जो नहीं दी मुर्शिद साहब ने, उनके इलम में आई नहीं बात, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे लेकिन ये चोरी की बर्फी का जिक्र कर देंगे कि तुमने ये हरकत क्यों की थी। तो ये डिपेंड करता है कि मुर्शिद की तवज्जो उधर को हुई तो उसके अहवाल खोल दिए अल्लाह ने उन पर, अल्लाह ने खोल दिए, खुद नहीं वो जान पाते, ये अल्लाह है जो उन्हें बता देता है। तो कोई मुर्शिद हो उसका इल्म महदूद है उस हद तक जिस हद तक रब उन्हें देना चाहता है। तो हर चीज का हर वक्त इल्म होना ये तो सिर्फ रब ताला की खूबी है, उसके वर्चूज में से एक वर्चू है कि वो अलीमुल खबीर है। कोई इंसान उस मकाम को नहीं जा सकता। ये किसी ने सवाल पूछा कि कितना कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसका शुमार कसरत में होगा। मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं अपने मुर्शिद के हुक्म से दिलनशी अंदाज में कुरान पाक पढ़ सकूं। देखिए, इंसान पर अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें फर्ज की हैं, उनमें हकुकुल्लाह भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं। जहां हम फेल करते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, अपना फर्ज जो अल्लाह ने हम पर फर्ज किया उसको पूरा करने में हम फेल हो जाते हैं फॉर सम रीजन, तो उसकी जवाबदेही हमें करनी है सबको, बहसीयत इंसान के। अगर मेरे मां बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत मुझ पर फर्ज है। मेरी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, वाइफ हैं, बच्चे हैं, अपनी वाइफ को पूरी तरह से लुक आफ्टर करना, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना, उनके आराम का ख्याल रखना, उनको इज्जत देना और इज्जत दिलाना, वो सब मेरी ड्यूटी है जिसके लिए मुझसे जवाब तलबी हो जाएगी। अपने बच्चों की जरूरियात का ख्याल करना, बिन मांगे उन जरूरियात को पूरा करना, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करना, उनकी शादियां अपने इल्म की हद तक अच्छे लोगों में कर देना, ये सब मुझ पर फर्ज हैं। अगर मैं उसमें फेल कर जाऊंगा तो मैं आंसरेबल हूं अल्लाह ताला को, दुनिया को भी आंसरेबल हूं, बात रब की ज्यादा है। मेरे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जो हकूक मुझ पर हैं, मैं उन हकूक को अदा करने के लिए आंसरेबल हूं अल्लाह ताला को। व्हाई डिड आई फेल देयर? तो जब मैं अपने फराइज, इसी तरह मुझे वक्त पर नमाजें पढ़ना है 5, और जो मुझ पर फर्ज किए गए हैं रोजा ज़कात हज, ये सब मुझे करनी है, मैं अगर इनमें फेल कर जाऊंगा तो मैं आंसरेबल हूं अल्लाह को, गुनाहगार भी हूं। अगर ये तमाम ड्यूटीज पूरी करने के बाद जो मेरा वक्त है, इल्म का हसूल मुझ पर फर्ज है, ये हदीस है, हर मुसलमान औरत और मर्द पर इल्म का हसूल फर्ज है, मुझे वो इल्म भी हासिल करना है। अब वो इल्म कई हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके जरिए से हासिल होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो मेरा वक्त बचता है, अगर मैं उसको याद इलाही में सर्फ कर दूं तो मेरे वक्त का बेहतरीन मसरफ होगा वो, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ माई टाइम। कुरान पाक की तलावत बहुत फजीलत रखती है। मैंने यहां एक मर्तबा से जायद मर्तबा यह अर्ज किया कि जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आपने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा, तो रब ताला से यही अर्ज की थी कि या बारी ताला मुझे अपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दें। तो रब ने अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया कि फिर कुरान पाक कसरत से पढ़ा करो, इसकी फजीलत ये है। तो जितना हमारे पास टाइम स्पेयर होता है अपनी ड्यूटीज पूरी करने के बाद, उसको अगर हम तलावत कलाम पाक में सर्व कर दें, हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो जितनी सूरतें याद हैं हम तलावत करते रहें, सवाल कि जनाब हजरत सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब की नमाज जनाजा किस शख्सियत ने पढ़ाई थी? ये आपके खलीफा थे, एक ही थे, जनाब शम्स तुर्क पानीपति, शम्स उनका नाम था। चूंकि कौमियत के लिहाज से तुर्क थे तो उनके नाम का हिस्सा बन गया शम्स तुर्क, और दफन है पानीपत में तो उस नस्बत से पानीपति उनके नाम के साथ लग गया। तो ये खलीफा थे जनाब सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब के, शम्स तुर्क पानीपति उन्होंने पढ़ाई थी। एक सवाल किया है कि इंसान का दुनिया में आने का प्राइमरी मकसद क्या है? अगर इबादत करना मकसद है तो उसके लिए फरिश्ते, चरिंद परिंद, पौधे ही काफी थे। अगर बच्चे पैदा करना मकसद है तो उसके लिए जानवर काफी थे। तो क्या फिर बुनियादी मकसद हयात इंसान का औरत के लिए सिर्फ घर में काज करना और मर्द का नौकरी या कारोबार करना मकसद हयात है? ऐसा नहीं है। रब ताला ने क्लियरली फरमाया कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत के आगे बहुत से मायने हैं। इबादत लफ्ज अबद से निकला है, ये अलिफ वाला अबद नहीं ऐन वाला अबद, जिसका मतलब उर्दू में बंदगी है। तो अल्लाह ताला ने जो जिस तरह से हमें जिंदगी का बताया कि इस तरह जिंदगी गुजारी जाए, जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल के जिंदगी गुजारते हैं तो सबकी सब जिंदगी वो इबादत बन जाएगी। इसलिए कहा कि मोमिन का सोना भी इबादत है, इसलिए कि रब ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। वहां भी जो शख्स, जो मुसलमान रात को आराम कर रहा है अगले दिन की मेहनत के लिए, तैयारी करने के लिए, वो हुक्म मान रहा है रब की, रब का, कि रब ने रात आराम के लिए बनाई है, तो वो बंदगी है उसकी कि वो हुक्म भी मान रहा है, इसीलिए उसको सोने को इबादत कहा गया है। तो इबादत उन मायनों में है कि जो कुछ जिंदगी का रास्ता कुरान पाक में रब ताला ने बता दिया इंसान को, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो उस रास्ते पर चलना ही इबादत है असल में। ये तो वो मकसद है। वैसे यहां मैंने एक बार अर्ज किया था कि जब कुछ नहीं था, सिर्फ रब था और उसके फरिश्ते थे, तो रब ने चाहा कि मैं कोई ऐसी मखलूक तख्लीक करूं जो मेरी जात का मजहर हो, जिससे ये पता चल सके कि रब कैसा है। तो रब ताला ने फिर इंसान को बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला के जो वर्चूज हैं मास्वाय रब के, रब होने के वर्चू के, ये भी एक वर्चू है रब होना, पालने वाला, या उसका जाती नाम है अल्लाह, इसका वर्चू, इसका परतो अक्स, वो इंसान में नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो सिफात हम सिफाती नाम पढ़ते हैं, उनका एक अक्स इंसान के अंदर दिखाई देता है कि इंसान बयक वक्त जुल्म भी करता है, गुस्सा भी उसको आता है, सजा भी देता है, रहम दिल भी होता है इंसान, दूसरों के काम भी आता है, दूसरों का मददगार भी है, मुआफ भी कर देता है। ये सब वर्चूज हैं, उसका एक अक्स है। तो वो जो रब ने चाहा कि मैं ऐसी मखलूक तख्लीक करूं जो जिससे ये जाना जा सके कि मैं कैसा हूं, तो उसने इंसान को तख्लीक किया और उस इंसान को अपना नायब बना के जमीन पे उतार दिया। उसके बाद रब ताला ने अपने तमाम रसूलों और पैगंबरों और नबियों के जरिए इंसान को सही रास्ते पर चलाए रखने के लिए बार बार रिमाइंडर दिए हैं, सहीफों की सूरत में, आसमानी किताबों की सूरत में, और बिलआखिर कुरान पाक, वहां अल्लाह ने अपना दीन, अपने अहकाम मुकम्मल कर दिए और वो ताक क्यामत उसको कायम कर दिया। ये मकसद है इंसान की जिंदगी का। आपने चरिंद परिंद और पौधों की बात की, उनके पास अकल नहीं है, वो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते किसी चीज पर, क्योंकि रब ने इंसान को अपना नायब बनाया तो इसको इख्तियारात भी सौंपे, इसको ये इख्तियार दे दिया कि जो राह चाहे वो अपना ले, लेकिन साथ ये बता दिया कि ये राह सीधी है, इसको अपनाओगे तो इनाम मिलेगा। तो इंसानों में और चरिंद परिंद में और दूसरी मखलूक में यही एक फर्क है, हत्ता कि इसे फरिश्तों से भी बुलंद मकाम दिया इंसान को, इसलिए कि फरिश्ते सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं और रब ताला की बंदगी सिर्फ इंसान उस सेंस में करता है जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। अकल है, ऑप्शन मौजूद है, इख्तियार मौजूद है दूसरी राहों पर चले जाने का, उसके बावजूद वो रब ताला की अहकामात की पाबंदी जब करता है तो वो इनाम पाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। चरिंद परिंद जमादात इन नबातात इन सब से अफजल है इंसान इसी एंगल से। दूसरा सवाल यह है कि जज्बात और एहसास दूसरों के लिए एक हद से तजावज कर जाएं तो ये कैसा है। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग इसको पागलपन का नाम देते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात की जाए बस, क्या इस मुआशरे में कामयाब होने के लिए बेहिस होना जरूरी है। देखिए, बेहिस होना खूबी नहीं, बहुत बड़ी खराबी है। दूसरों का एहसास होना ये इंसान की एक बड़ी खूबियों में से एक खूबी है। अल्लाह ताला ने इंसान में जज्बात रखे हैं और जज्बात रहमत हैं अल्लाह की, लेकिन साथ ही अल्लाह ने एक चीज ये फरमा दी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि इस्लाम एतदाल का रास्ता है। इस्लाम में एक्सट्रीम्स को दखल नहीं है, उसको कंडेम करता है इस्लाम, एतदाल की तलकीन करता है। तो जज्बात को और एहसास को एतदाल में रखा जाए, एक्सट्रीम्स पर न जाया जाए, तो ये बहुत ही पसंदीदा चीज है। लेकिन इंसान अगर अपने जज्बात और एहसासात में एक्सट्रीम पर चला जाए तो वही मबाह चीज बुराई बन जाएगी। तो इंसान को अपने जज्बात और एहसासात में एतदाल में रहना चाहिए। बाकी सवालात के जवाब इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी, उस तक के उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।